सुर्खियों में
नमस्कार श्रोताओं, सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कमल कुमार प्रजापति। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं केंद्रीय कैबिनेट की आज हुई बैठक में लिए गए निर्णयों पर। और आज केंद्रीय कैबिनेट ने 8,80,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसमें सबसे बड़ी परियोजना जल जीवन मिशन के दूसरे चरण की मंजूरी है, जिसमें 8,70,000 करोड़ रुपए का परिव्यय होगा। इसके अलावा देश में कई ढांचागत विकास परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है, जिसमें कनेक्टिविटी से लेकर ढांचागत विकास पर जोर दिया गया है। आज मीडिया को संबोधित करते हुए केंद्रीय कैबिनेट के निर्णयों के बारे में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी, आइए सुनते हैं।
सबसे बड़ा फैसला जल जीवन मिशन 2.2, सेकेंड मदुरई एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट डिक्लेयर करना, थर्ड पश्चिम बंगाल में संतरागाछी से खड़गपुर फोर्थ रेलवे लाइन बनाना, चौथा प्रोजेक्ट आज जो अप्रूव हुआ वो सैंथिया से पाकुर, ये मध्य बंगाल है, पश्चिम बंगाल का नॉर्थ बंगाल साउथ बंगाल बीच में जो मिडिल वाला पार्ट है, सैंथिया पाकुर फोर्थ लाइन, फिर मध्य प्रदेश में बदनवार से तांडला तिमरवाणी इसके फोर लेनिंग का काम हाईवे में, और जेवर एयरपोर्ट की फरीदाबाद वाली साइड से कनेक्टिविटी, ये छह आज बड़े फैसले लिए गए कैबिनेट में।
तो आज कार्यक्रम में हमारे साथ विशेषज्ञ के तौर पर जुड़े हैं राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन। अशोक टंडन जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
नमस्कार
अशोक जी। हम चर्चा की शुरुआत करते हैं पहले निर्णय के साथ। उससे पहले हम अभी थोड़ी ही देर पहले केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को संबोधित करते हुए जल जीवन मिशन 2.0 के विस्तार और इस योजना के संबंध में जो निर्णय लिया गया उस पर क्या कहा, हम सुन लेते हैं।
इस जल जीवन मिशन का आज 2.0 वर्जन अप्रूव हुआ। 1.0 वर्जन इतना महत्वपूर्ण, महत्वाकांक्षी, इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, करीब 13 करोड़ परिवारों तक पहुंचा नल से जल। अब इन सारे प्रोजेक्ट्स की ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, वाटर सोर्स सोसाइटी को जितनी डिफरेंट जो कमिटीज बनी है, विलेज की कमिटी, ग्राम सभा की कमिटी, पंचायत की कमिटी, इन सबको इन्वॉल्व करना, फिर जहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ रही है वहाँ पे नए सोर्सेज निकालना, एक तरीके से अब इसको सस्टेनेबल बनाने का टाइम आया। शुरू में टेक ऑफ करना, कवरेज लाना, अब है इसको सस्टेनेबल बनाना। इस तरह से सोच के इस प्रोजेक्ट को बनाया गया है जल जीवन 2.0। कंप्लीट इसका रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, रीओरिएंटेशन कर रहे हैं, सारा फोकस इंफ्रा क्रिएशन से अब सर्विस डिलीवरी पे।
अशोक जी, हम सभी जानते ही हैं कि जल जीवन मिशन के पहले चरण में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए गांव-गांव तक लगभग 13 करोड़ घरों तक पाइपलाइन के जरिए गुणवत्तापूर्ण साफ स्वच्छ जल पहुंचाया गया। और जैसा कि अभी केंद्रीय मंत्री की बात हमने सुनी, उन्होंने कहा कि अब फोकस है सतत तरीके से लोगों तक ये सेवाएं पहुंचे और गुणवत्ता के साथ पहुंचे। तो क्या कहना चाहेंगे, दूसरा जो चरण अब शुरू होगा जल जीवन मिशन का, वो कैसे इस योजना को और पुख्ता तरीके से जमीनी स्तर पर लागू करने में मददगार होगा?
देखिए, जैसे अभी मंत्री जी ने कहा कि अब इस प्रोजेक्ट को सस्टेनेबल बनाने का समय आ गया है और इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से रिस्ट्रक्चर भी किया जा रहा है। अब इंफ्रा क्रिएशन से सर्विस डिलीवरी पर फोकस होगा, जैसे मंत्री जी ने भी अभी बताया, और इसकी अलॉटेड रकम भी अब बढ़ाकर 8,70,000 करोड़ कर दी गई है। और इसका मुख्य फोकस अभी जैसे आप भी कह रहे थे कि ऑपरेशन और मेंटेनेंस में समुदायों को शामिल भी किया जाएगा, इनको करना होगा तो सभी समुदायों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। और इस योजना के तहत सभी स्टेट की डिजिटल मैपिंग की जाएगी, यानी सभी प्रोग्राम सर्टिफाइड किए जाएंगे। तो इसमें जहां कहीं भी कभी कभी आरोप लगते हैं कि भ्रष्टाचार का गुंजाइश है, तो किसी प्रकार का भ्रष्टाचार का गुंजाइश ना रहे और जो भी इसके लाभार्थी हैं उन तक ये योजना का जमीनी स्तर तक भी इसका लाभ मिले और इसका जो फीडबैक आए उससे भी ये पता चलेगा कि ये मैपिंग होने से ये योजना कहाँ कहाँ तक कारगर हो रही है और यदि कोई उसमें कमी रहती है तो उसको और आगे कैसे अच्छा किया जा सकता है।
और मंत्री जी ने जैसा कि प्रेस ब्रीफिंग में इस बात को स्पष्ट किया कि जल जीवन मिशन का पहले भी ये मकसद रहा है कि माइक्रो मैनेजमेंट के तौर पर ये योजना पूरी तरह से काम करे, और दूसरे चरण में भी इसी बात पर फोकस होगा। समुदाय की भागीदारी का आपने जिक्र किया ही, साथ ही उन्होंने कहा कि हर गांव के लिए एक विशेष मास्टर प्लान बनाने पर फोकस होगा और जल उत्सव, जल अर्पण जैसे जागरूकता कार्यक्रमों को भी इसमें शामिल किया गया है। तो जब कोई योजना समुदाय के स्तर पर भागीदारी के साथ लागू की जाती है और उसका बिल्कुल जमीनी स्तर पर प्रबंधन होता है जिसमें समुदाय शामिल होता है, तो कैसे और ज्यादा उसकी सफलता बढ़ जाती है।
बिल्कुल, मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि एक यूनिफॉर्म नेशनल डिजिटल फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है जिसका नाम होगा सुजलम भारत।
जी जी।
जिसके तहत हर गांव को एक यूनिट सुजल गांव सर्विस एरिया आईडी दी जाएगी, जो सोर्स से नल तक पूरे पीने के पानी के सप्लाई सिस्टम की डिजिटल मैपिंग करेंगे, जैसे मैंने पहले भी कहा। तो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी पक्का करने के लिए जल अर्पण के जरिए स्कीमों को शुरू करने में और फॉर्मल हैंडओवर करने में ग्राम पंचायतों और VWSCC को शामिल किया जाएगा, और एक ग्राम पंचायत पूरा काम होने पर सर्टिफाई करेगी और खुद को हर घर जल तभी घोषित करेगी जब ये कंफर्म हो जाएगा कि राज्य सरकार ने गांव में ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए सही सिस्टम बना दिए गए हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण आज का फैसला है जिसमें कहीं भी किसी तरह की गुंजाइश नहीं है कि या तो राज्य सरकारें उसमें सहयोग ना करें या फिर ग्राम पंचायतें सहयोग ना करें। तो सभी की साझेदारी के साथ इस योजना को घर घर तक जल पहुंचाने का जो मिशन चला है उसकी सफलता के लिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया,
क्योंकि एक बड़े आवंटन के साथ आज इस दूसरे चरण को मंजूरी मिली है। तो एक और आखिरी प्रश्न में इस योजना से संबंधित मैं ये पूछना चाहूंगा कि पहले भी योजना में महिलाओं की भागीदारी पर बहुत फोकस था और इस बार भी दूसरे चरण में स्वयं सहायता समूहों और महिला समितियों की भागीदारी पर भी जोर है, खासतौर पर ऑपरेशन और उसके प्रबंधन में। तो कैसे महिलाएं इस योजना में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभा रही हैं?
बिल्कुल, पहले से भी महिलाएं इसमें निभा रही हैं भूमिका, और ग्राम पंचायतों में तो महिलाओं का एक तरह से बहुमत भी है, क्योंकि अभी देश में जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं उनके चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण रखा गया है और देश में बहुत बड़ी मात्रा में महिलाएं ग्राम सरपंच भी हैं, तो इसलिए महिलाओं की भागीदारी तो पहले से भी थी और अब क्योंकि इसको एक तरह से पुख्ता किया गया है तो जो योजना बनेगी वो पुख्ता तरीके से लागू होगी और इसमें महिलाओं की सचमुच में भागीदारी भी रहेगी।
अगले निर्णय की ओर बढ़ते हैं, और एक दूसरे महत्वपूर्ण निर्णय में आज केंद्रीय कैबिनेट ने मदुरई हवाई अड्डे को मदुरई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के तौर पर उसकी मंजूरी दे दी है। तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस पर क्या कहा, सुनते हैं।
आज का दूसरा बड़ा फैसला है मदुरई एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट डिक्लेयर। तमिलनाडु में जो तीन सबसे बड़े शहर हैं उसमें चेन्नई, कोयम्बतूर और मदुरई। मदुरई सांस्कृतिक केंद्र का बहुत पुराना शहर है और सांस्कृतिक केंद्र है, बहुत बड़ा एजुकेशनल हब है, बहुत बड़ा हेल्थ केयर का हब है और बहुत बड़ा रिलीजियस और कल्चरल श्रद्धा का एक बड़ा स्थान है। लोकेशन अगर हम देखें मदुरई की तो आसपास बड़े शहरों के साथ मदुरई एयरपोर्ट का कनेक्टिविटी लगाता है। ऑलरेडी ये कस्टम नोटिफाइड एयरपोर्ट है लेकिन लोगों का एस्पिरेशन है कि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने। जैसे ही कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनता है ऑटोमेटिकली उसमें बहुत सारी फैसिलिटीज आती है और दुनिया भर से कनेक्टिविटी, जो भी एयरलाइंस होती है वो भी अपने वहां पे स्लॉट्स लेने के लिए बिड करने लगती है, तो ओवरऑल एरिया का ग्रोथ बहुत बढ़ जाता है।
तो अशोक जी, हम आपसे समझना चाहेंगे, जब भी हम एक हवाई अड्डे की बात करते हैं तो जैसे इसका अब स्टेटस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में हमें देखने को मिलेगा, कैसे परिवर्तन आएगा आसपास खासतौर पर तमिलनाडु के कुछ अलग शहरों में?
मदुरई पहले से ही एक बहुत प्रमुख हवाई अड्डा रहा है क्योंकि ये मंदिरों का शहर है, तो यहाँ मीनाक्षी टेम्पल और अगर हम बात करें मंदिरों की और रामेश्वरम जाने के लिए भी यहाँ से हवाई संपर्क होता है। लेकिन इसको अंतर्राष्ट्रीय दर्जा देने का अर्थ ये है कि जितने भारतवंशी बाहर रहते हैं, खासतौर से हम देखें खाड़ी के देशों में है और कई साउथ ईस्ट एशिया में है, जो इन मंदिरों में आना चाहते हैं तो यहाँ अगर इंटरनेशनल फ्लाइट आएंगी, जैसे मान लीजिए कि इंटरनेशनल फ्लाइट गल्फ कंट्री से आती हैं या साउथ ईस्ट एशिया से आती हैं, सिंगापुर से आती हैं, कुआलालंपुर से आती हैं, तो एक बहुत बड़ी संख्या में दुनिया के दूसरे देशों से भी लोग और विदेशी पर्यटक भी इन धार्मिक स्थलों तक आसानी से पहुंच सकेंगे। ये मांग बहुत समय से चल रही थी क्योंकि लोगों को बहुत फ्लाइट बदल बदल कर जाना पड़ता था, पहले चेन्नई उतरी है फिर उसके बाद मदुरई आए, तो ये एक महत्वपूर्ण फैसला है। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर जो है रबड़, रसायन, ग्रेनाइट उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा और ये शहर जो है वो शिक्षा और स्वास्थ्य का केंद्र भी है। तो यहाँ पर जो इंटरनेशनल टूरिज्म जिसको हम हेल्थ टूरिज्म कहते हैं, हम जानते हैं कि केरल में दुनिया भर से लोग आते हैं जो अपने हेल्थ रिजॉर्ट्स हैं केरल में उनके लिए, तो ये शिक्षा की दृष्टि से और स्वास्थ्य केंद्र के रूप में भी ये उभरेगा। और अब एक तरह से इसको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दी गई है, ये शहर केवल चेन्नई नहीं है जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों से जुड़ा है, अब मदुरई को भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा मिलने से दुनिया भर के देशों के साथ अब मदुरई जुड़ जाएगा।
जी, कुछ ढांचागत विकास की परियोजनाओं की भी अगर हम आपसे चर्चा करना चाहें तो खासतौर पर पश्चिम बंगाल पर इस बार विशेष जोर रहा केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में, जैसे कि संतरागाछी खड़गपुर परियोजना और सेंथिया पाकुड़। कैसे जब रेलवे लाइन परियोजनाओं के विस्तार और दोहरीकरण और इनके विकास को हम इन क्षेत्रों में देखते हैं तो कैसे कनेक्टिविटी से लेकर जो लॉजिस्टिक्स है उसमें इससे मदद मिलती है और खासतौर पर पश्चिम बंगाल को इससे क्या लाभ होने जा रहा है?
देखिए, इसमें जो आपने बात कही उसके अतिरिक्त खड़गपुर तक सड़क मार्ग के चौथे लेन के निर्माण को भी मंजूरी दे दी गई है और इस प्रोजेक्ट के लिए कुल 2,905 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इसी तरह से उत्तर प्रदेश के जेवर एयरपोर्ट को एलिवेटेड रोड से जरिए फरीदाबाद से जोड़ने वाली योजना को भी मंजूरी दी गई है और उसके लिए 3,631 करोड़ रुपए की बजट को भी मंजूरी दी गई है।
तो अशोक जी, अभी आपने जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से फरीदाबाद की कनेक्टिविटी की चर्चा की तो प्रेस ब्रीफिंग में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी इस पर कुछ कहा, आइए हम अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं।
जेवर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी उत्तर प्रदेश से भी, हरियाणा से भी और दिल्ली से भी, रोड काफी एरिया में एलिवेटेड रहेगा और ये जेवर एयरपोर्ट को फरीदाबाद के एरिया से कनेक्ट कराएगा। यही आगे कनेक्टिविटी फिर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे आ जाती है। तो एक तरीके से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, यमुना एक्सप्रेस वे, इन दोनों का जेवर एयरपोर्ट के साथ कनेक्टिविटी।
तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर पर जितना भी प्रयास चल रहा है कई सालों से उसमें और इसको तेजी से कारगर तरीके से बना और जहां जहां आवश्यकता है इंफ्रास्ट्रक्चर को और आगे बढ़ाने के लिए उस दृष्टि से भी आज कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए हैं। और इसके बारे में अगर हम बात करें तो आज कुल मिलाकर जो निर्णय हुए हैं उसमें 8.8 लाख करोड़ रुपए की योजनाओं को आज स्वीकृति दी गई है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला हुए हैं आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में।
अंत में मैं आपसे यही जानना चाहूंगा, जैसे कि प्रेस ब्रीफिंग में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार की तीसरी टर्म है उसमें ढांचागत विकास की जो परियोजनाएं हैं वो 22 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मंजूर हुई हैं और तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर पर इस टर्म में काम हो रहा है और पिछले दो सरकारों में भी देखा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार ने बहुत फोकस किया है। तो कैसे देखते हैं कि इतनी बड़े बजट आवंटन के साथ, पूंजीगत खर्च के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार ध्यान दे रही है?
देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर से ही विकास होता है और अगर देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनना है और नए भारत का निर्माण करना है तो भूमिगत और जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें रेल आता है, हाईवेज आते हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आती है, हवाई अड्डे आते हैं, तो ये सब को मिलाकर जो तेजी से इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी, और यही कारण है कि देश की अर्थव्यवस्था भी जो है वो तेजी से आगे बढ़ रही है और अब दुनिया के प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में आकर खड़ी हो गई है और इसी के चलते इन्वेस्टमेंट भी आती है बाहर से, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट आती है, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स आते हैं उनकी सबसे पहली जो मांग होती है वो होती है इंफ्रास्ट्रक्चर आपका है कि नहीं है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो बल दिया जा रहा है पिछले 12 साल से उसी का एक परिणाम है कि आज भारत जो है बहुत तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है और सारी योजनाओं की सफलता के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है ताकि हर ग्राम तक, हर व्यक्ति तक उसको लाभ पहुंच सके उन योजनाओं का। तो उस दृष्टि से पूरा जो एक महत्व दिया जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर को वो सचमुच में ही सराहनीय है।
जी, बहुत धन्यवाद अशोक जी कार्यक्रम में जुड़े और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो आज बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए उन पर आपने विस्तार से अपना विश्लेषण हमारे श्रोताओं के समक्ष रखा। बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
श्रोताओं, इस कार्यक्रम को आप दोबारा सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी जा सकते हैं। साथ ही हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुन सकते हैं।
सुर्खियों में